वाणी में आता है, कर्तापन से वासना, वासना से संसार, यही अज्ञान है जीव को आवागमन दुख सा। कर्तापन वासना, वासना से उत्पन्न इच्छाएं और इस वासना के कारण ही ये पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियों सहित शरीर और शरीर के साथ संसार ये प्रकट होता है। और इसका मूल कर्तापन है। और इस सब को जीव के लिए अज्ञान कहा जा रहा है। ये सारा का सारा जीव के लिए अज्ञान है। ये ज्ञान अज्ञान जितनी बातें हैं ये सब जीव के बाहर की हैं। वास्तव में जो शुद्ध जीव है वो इनसे स्वतंत्र है, लेकिन अज्ञानता के कारण जीव अपने आप को इन सबके साथ देखता है, इन सबके सहित देखता है। इसमें सबसे पहला जो भ्रम है जीव के मन के अंदर, यानी कि ये मोह है, वो इस देह के प्रति है कि देह ही मेरा स्वरूप है, मैं देह ही हूं। तो जीव वास्तव में इस वाणी के अनुसार कितना सूक्ष्म है, लेकिन अनुभव में ये कितना स्थूल है कि देह बन गया। तो देह के अंदर ही ये पांच ज्ञानेंद्रियां स्थित हैं, जिसको आप श्रवण इंद्रिय कहते हो, नासिका इंद्रिय बोल कहते हो, स्पर्श इंद्रिय बोलते हो, जिह्वा इंद्रिय बोलते हो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध और आंख याद, ये ज्ञान इंद्रियां। इसके द्वारा आप संसार को सेंस करते हो, उसका अनुभव करते हो। पांच कर्म इंद्रियां भी हैं, हाथ पैर मुंह से बोलते हो और गुदा लिंग, ये पांच कर्म इंद्रियां हैं जिसके द्वारा आप डिजायर पूरी करने के लिए शरीर का उपयोग करते हो। ये सारा का सारा नाशवान और परिवर्तनशील है। और जीव इसमें परमानेंसी देख रहा है, इसमें स्थायित्व देख रहा है। कोशिश जीव यही करता है, ये बना रहे, लेकिन थोड़े से विचार के बाद भी इसको पता लग जाता है कि ये किसी भी हालत से बना नहीं रह सकता, ये सब बदल जाएगा, ये नाश भी हो जाएगा। जीव का हर प्रयास, हर कोशिश जिंदगी में ही नाकाम हो जाती है। इसी माजी कह रहे हैं, यानी इच्छा पूर्ति के लिए जो जीवन है ये नाशवान और दुखदायी जीवन। एक संसारी व्यक्ति के लिए इसके अलावा है कुछ नहीं, इसके अलावा जानते हैं कुछ नहीं। पूरा संसार, चाहे वो ज्ञान जो है संसार का आपको सारी दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में मिलता हो, बड़े बड़े विद्वान उस ज्ञान को देते हो, लेकिन है यही जो सांसारिक ज्ञान है वो इसी के अंदर सिमटा हुआ है। वो पूरा का पूरा जीवन, पूरा का पूरा ज्ञान, पूरा का पूरा पुरुषार्थ आपका, उसका ये नतीजा मिल रहा है, ये फल मिल रहा है, कि शरीर नाश हो जाता है, सुख परिवर्तित हो जाते हैं, चैन के लिए जीता रहा और बेचैनी मुझको प्राप्त होती रही। इसलिए सब कुछ कहते हैं ये जो जीवन का जीवन जीने का तरीका है ये कंप्लीट फेलियर ऑफ लाइफ है। इसीलिए इसको उन्होंने कह दिया ये अज्ञान पूर्ण जीवन। जी रहा हूं सुख प्राप्ति के लिए या चैन प्राप्ति के लिए या शांति प्राप्ति के लिए, परंतु ये मुझको मिल नहीं पा रहा। क्षणिक मिलता है फिर खो जाता है, फिर क्षणिक मिलता है फिर खो जाता है। तो ऐसी हालत में हमारी स्थिति तो ऐसे ही हुई जैसे कि हम नाव में यात्रा कर रहे हो, नदी में जल बड़ा गहरा हो, उसमें बाढ़ आई हुई हो। तो जिस नदी में बाढ़ आई हुई होती है उसकी धारा तो बड़ी तीव्र होती है। आप नाव में बैठे हुए तो आपके मन से ये बात निकल ही नहीं पाती कि जिंदगी खतरे में है, क्योंकि पता नहीं कब भंवर आ जाएगी, कब नाव किसी से टकरा जाएगी। डरते डरते ही नाव में बैठे भी रहते हो, यात्रा भी करते रहते हो। और कभी भंवर में फंस गई, निकल गई वहां से, बड़ी प्रभु से दुआ करते, हे प्रभु तुम्हें रक्षा कर। बस संसार की यात्रा भी बस ऐसी ही है, घबराते घबराते ही जीते रहते हैं, डर डर के ही जीते रहते हैं, चैन कभी नहीं मिलता। कभी बच्चों पे मुसीबत आ जाती है, कभी घर पे मुसीबत आ जाती है, कभी अपने शरीर पे मुसीबत आ जाती है, कभी जिस देश में रहते हैं उस देश पे मुसीबत आ जाती है, पता ही नहीं। देश जिस धरती पे है उस धरती पे भी मुसीबत आ जाती है, धरती में क्या परिवर्तन हो गया पता ही नहीं। तो पूरा का पूरा संसार, उसकी जो स्थिति है वो निरंतर परिवर्तनशील है और निरंतर भय देने वाली भी, क्योंकि जब से संसार बना ना यहां लड़ाइयां खत्म हुई, ना यहां एक दूसरे से दुश्मनी खत्म हुई, ना यहां गरीबी खत्म हुई, ना यहां बीमारी खत्म हुई, ना यहां मौत खत्म हुई, सारी चीजें वैसी की वैसी कायम। इसीलिए जीव को कोई रास्ता ही नजर नहीं आता जो अपने आप को देह करके जानता है कि मैं देह। तो इस ज्ञान के साथ जो व्यक्ति जी रहा है उसका संसार में बचने का कोई रास्ता नहीं, उसने बेचैनी लेकर ही जीना है और बेचैनी लेकर ही मरना है। तो इसलिए ये पूरी की पूरी धरती, पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो हमको चलता फिरता नजर आ रहा है, सत्पुरुष की वाणी जब पढ़ते हैं या सत्पुरुषों के शास्त्र का स्वाध्याय जब करते हैं या उनसे संपर्क हो जाए, उनका सत्संग सुनने का मौका मिलता है, तब उनके द्वारा ये बोध होता है, ये होश आता है कि इतनी बड़ी धरती निरंतर घूम रही है, मनुष्य का तो कोई रोल ही नहीं है इसके अंदर, और सूर्य का प्रकाश जिसके बिना धरती पर जीवन ही नहीं। ये धरती उस सूर्य से समान दूरी भी बनाई हुई है, उसके चारों तरफ भी घूम रही है और अपनी किली पे भी घूम रही है। कितने वर्ष बीत गए, अनगिनत वर्ष, इसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं आया। कौन शक्ति है जिसको बनाए हुई, सारी दुनिया यदि किसी मनुष्य को देखो आप दुनिया में, भले ही वो ईश्वर की भक्ति करता हो या ना करता हो, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली ईश्वर को मानता है, सत्पुरुषों को मानता है। किसकी किस पे श्रद्धा है वो अलग अलग बातें हैं, लेकिन किसी ना किसी महापुरुष पे, किसी ना किसी सत्पुरुष पे लोगों की श्रद्धा जरूर है। आज भी बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, जबकि ऐसे भ्रमित लोग भी हैं दुनिया में, ऐसे भ्रमित राजा भी हुए जिन्होंने सत्पुरुषों को फांसी भी लटका दिया, जिसकी आज वो पूजा करते हैं, जिसकी बाइबल, जिसकी गीता, जिसकी कुरान, उसको बड़े पूज्य दृष्टि से पढ़ते हैं, उसे सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हीं पर आक्रमण किए लोगों ने, उनको मार भी डाला। ये संसार चक्र आप देखिए, चाहे वो सत्पुरुष हो चाहे वो साधारण मनुष्य हो, सभी का जीवन यहां खतरे में है, सभी इस प्रकृति का शिकार होते हैं। लेकिन सत्पुरुष कहते हैं कि इस संसार में कोई स्थिर वस्तु है, कोई अमर वस्तु है, वो केवल ईश्वर शक्ति है, ईश्वर सत्ता है। उसको जो बोध कर लेता है वो सारे क्लेशों से मुक्त हो जाता है, मौत के भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि जीव कभी भी शरीर था ही नहीं और कभी भी हो ही नहीं सकता। ईश्वर कभी भी शरीर था ही नहीं, कभी हो भी नहीं सकता। तो जीव खुद जीवन रूप है, ईश्वर खुद जीवन रूप है। इसीलिए जो सत्पुरुष के ज्ञान के आधार पर हम जीवन व्यतीत करते हैं, तो धीरे धीरे इस शरीर का अहंकार हमारा कमजोर पड़ता है, धीरे धीरे संसार के सुखों पर जो हमारे जीवन की निर्भरता है, इसके लिए जो जीते हैं, धीरे धीरे ये भी कमजोर पड़ता है, और एक स्थिति ऐसी भी आ जाती है कि हम ईश्वर के लिए जीने लगते हैं। हमारे जीने का उद्देश्य इंद्रिय भोग प्राप्त करना नहीं रह जाता, ईश्वर दर्शन करना हो जाता है। इसीलिए सत्पुरुष जब इस विज्ञान को समझाते हैं तो वो बारीकी से कह रहे हैं, कर्तापन से वासना, वासना से संसार। जीव के अंदर सबसे पहले कर्तापन पैदा होता है, इसको अहम भाव भी कहते हैं, कि ईश्वर अलग है, मैं अलग हूं। अब कर्तापन से वासना पैदा होती है, वासना तीन गुणों से युक्त होती है, सतोगुणी वासना, रजोगुणी वासना, तमोगुणी वासना, इसका विवेचन कई बार हो चुका है। इस वासना के कारण ही इस जीव के अंदर मनन पैदा होता है, थिंकिंग पैदा होता है, विचार पैदा होता है। और उससे ही फिर ये सृष्टि पैदा हो जाती है, जिसमें देह और संसार शामिल है। आज कहते प्रेमी, देह करके ही संसार है, देह संसार एक ही चीज। तो वासना से संसार, अब देखिए देह उत्पन्न होती है तो संसार साथ में उत्पन्न होता है, देह पांच तत्व की है तो संसार भी पांच तत्व है। ये इसीलिए इसको संकल्प सृष्टि कहा जाता है, ये संकल्प से पैदा होती है, जिसका प्रमाण हमारा स्वप्न होता है, हमको पता है और आसानी से सीख भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं कि सो रहा हूं लेकिन हल्की नींद है, तो मन का संकल्प शांत नहीं हुआ है, तो संकल्प से सृष्टि का निर्माण हो जाता है, नई देह की रचना भी हो जाती है, नए संसार का रचना भी हो जाती है, नए लोग भी पैदा हो जाते हैं। और इसी प्रकार जिस प्रकार जागृत हालत में कर्म कर रहा हूं स्वप्न में, इसी प्रकार मैं सुख दुख भोगता रहता हूं, परेशान होता रहता हूं, और जो सारी क्रियाएं संसार में होती हैं वो स्वप्न भी। तो सत्पुरुष का विज्ञान जब हम प्रमाण के साथ जब विचार करते हैं, तब स्वप्न की रचना हमको समझ में आती है। ये सारी बातें जो सिद्धांत हैं कि मन करके संसार है, ये वहां समझ में आ जाती है बात। हाँ, बात संभव तो ठीक, स्वप्न का संसार नाम की वस्तु तो कोई है नहीं, कहीं नजर ही नहीं आती। लेकिन ये तो मेरे अनुभव की बात है, मैं कैसे डिनाई कर दूं कि स्वप्न होता ही नहीं है, स्वप्न में संसार होता ही नहीं है। स्वप्न में वो सब कुछ होता है जो इसे जागृत हालत में है। तो कहां से आया वो? संसारी लोग तो विचार में आती है बात, लेकिन उसको उस पर विचार करने की जरूरत नहीं समझते। सुनते रहते हैं स्वप्न की रचना, सुनाते रहते हैं लोग, विचार कोई नहीं करता। सत्पुरुष विचार करने को कहते हैं। ये संकल्प रूप संसार है। सपना जैसे रात का ऐसे जगदा खेत, वाणी तो बड़ा स्पष्ट कह रही है। स्वप्न की तरह से ही ये सारे जगत का खेत है। और यदि आपको इस पर विश्वास हो जाए, जो कि शास्त्र पर मनन करने वाले को होता है, ऐसा नहीं है सब ऐसे रह जाते हैं। शास्त्र पर मनन करने वाले को इस पर विश्वास होता है, इसीलिए वो गहराई से इस स्वप्न रूपी सुख दुख से मुक्त होने की कोशिश करता है। कह रहा है जब स्वप्न जैसी रचना है ये, स्वप्न में सुख भी होते हैं, दुख भी होते हैं, चैन भी मिलता है, कई बार बेचैनी भी मिलती है। लेकिन यदि पूरे स्वप्न की रचना विचार करो आप महीने भर की, तो आपको ये कहोगे बेचैनी ज्यादा नहीं, कोई सपना देखना नहीं चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे गहरी नींद आ जाए, शांति चाहता है, चैन चाहता है। ये हर मनुष्य की अंदर से इच्छा होती है। तो ये संसार जो स्वप्न रूप में वाणी के अनुसार है, या यूं कहिए कि संकल्प रूप से ये निर्मित है, तो संकल्प यदि शांत हो जाए तो संसार का अनुभव भी खत्म हो जाए। सारे सत्पुरुष एक सुर से कहते हैं समाधि में संसार नहीं होता, समाधि में केवल आनंद होता है, केवल शांति होती है। क्यों नहीं होता संसार? वहां कहां चला जाता है? सो भी नहीं रहा है सत्पुरुष, जाग रहा है वो, उसकी जागृत हालत में ही संसार गायब हो जा रहा है। क्यों गायब हो जा रहा है? क्योंकि मन का संकल्प खत्म हो जाता है। जागृत हालत में रहते हुए मन का संकल्प खत्म हो जाता है, इसलिए संसार भी खत्म हो जाता है। सारा संसार उस समय शांति रूप होता है, नाद रूप होता है, कुंडलनी रूप होता है, ईश्वर सत्ता रूप होता है। पूरा का पूरा संसार मैं देह। तो जीव सुखी है वहां पर, यदि हम वर्ड सुखी जानते ना, जीव वहां पर परम आनंद में स्थित है, वो उसे कोई क्लेश नहीं है। इसलिए आप देखते हो कि मां जी की बातें जब पढ़ते होंगे या जीवनी पढ़ते होंगे, तो प्रेमी घेरा बनाए हुए बैठे हुए हैं, इसी तरह से महाराज जी सामने बैठे हुए हैं। जब महाराज जी की समाधि टूटती थी, वो नॉर्मल मूड में होते थे, प्रेमियों से कहते थे प्रेमी कोई विचार करो, बस उन्होंने बात कह दी, शांत हो। अब 5 मिनट हो गए, 7 मिनट हो गए, किसी प्रेमी ने कोई विचार नहीं किया, माँ जी फिर समाधि में ऑटोमेटिकली, कोशिश करके नहीं, वो ऑटोमेटिकली उनकी स्थिति चले जाती। उसके बाद वो आधे घंटे बाद लौटेंगे, वहां से नीचे आएंगे, 15 मिनट बाद आएंगे, वहां टाइम तो है कोई नहीं, क्योंकि वहां डिजायर कोई नहीं। तो ऑटोमेटिकली जब वो टूटती थी, फिर कहते थे महाजी प्रेमी को विचार करो। तो सत्पुरुष की ये नेचुरल स्थिति है। और प्रेमी जो उनको घेरे बैठे हुए हैं, जिस गुरु के पास कोई साजो सामान नहीं है सुख का जो शिष्य को दे सके, शिष्य फिर भी बैठे हुए, उन्हें इतनी शांति महसूस हो रही है बैठे रहने से ही केवल, इस सत्पुरुष को छोड़कर जाने की इच्छा ही नहीं हो रही। बात भी कोई नहीं कर रहा, पूछ भी कुछ नहीं रहे, लेकिन जाने की इच्छा भी नहीं हो रही। तो गुरु की प्रेजेंस ही ये सिद्ध करती है कि जीवों का जो मन है उसके अंदर शांति है। प्रेमी खुद इसको बात को कहते थे कि जिस समय महाजी के पास बैठे होते थे तो ऐसा लगता ही नहीं था कि मेरी श्वास भी चल रही है या नहीं चल रही, इतनी सूक्ष्म श्वास हो जाती थी। जो सिमरन करने के बड़े लंबे अभ्यास के बाद जो चीज होती है महाजी के पास बैठ के हो जाती थी। इसका मतलब शांति का स्रोत संसार में नहीं है, संसार तो बेचैनी का स्रोत है। जहां संसार गायब है, महाजी के अंदर तो संसार गायब है ना, इंद्रियों का भोग गायब है ना, मन की इच्छा गायब है ना, वहां शांति। तो शांति संसार से ऊपर की चीज है, देह से ऊपर की चीज है, इंद्रिय भोग से ऊपर की चीज है, मन से ऊपर की चीज है। और मेरा सांसारिक जीवन इसी के अंदर है, तो शांति मुझे कहां से मिलेगी? तो इसीलिए जब तक मनुष्य सत्पुरुष के जीवन के बारे में, उसने जो विज्ञान वाणी के रूप में, शास्त्र के रूप में प्रकट किया है, उसके बारे में गहराई से चिंतन मनन करने की जरूरत ही ना समझे, तब तक कैसे वो इस मार्ग पर चलेगा? क्यों इंद्रिय भोगों को वो जहर समान समझेगा? उसके लिए तो अमृत समान है। आप कहीं भी इंद्रिय भोग इकट्ठे कर दो, देखो तो सारी भीड़ कैसी इकट्ठी हो जाएगी, वहां बिना बुलाए लोग पहुंच जाएंगे, वहां उनको सिखाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन यहां त्याग की बात हो, वहां चार लोग इकट्ठे करना मुश्किल हो जाएंगे आपको। तो बिना विवेक के, बिना इस अध्यात्म की समझ के मनुष्य सतमार्ग पर नहीं चल सकता। ये पकड़ के चलाने वाला मार्ग नहीं है, किसी को पकड़ के चला दो। प्रेमी नरेंद्र जिंदल जी एक साधु की बात सुनाया करते थे। वो कहते थे इधर हिमालय की तरफ एक गुफा में एक साधु रहता था, वो समाधि में ही रहता था ज्यादा। साल में एक दो बार वो नीचे उतरता था। तो ये आर्य समाज के जो आनंद स्वामी थे, ये बड़े खोजी आदमी थे, उनको पता लगा तो उनके पास पहुंच गए। अब गए, बैठे रहे वहां पर, उनकी समाधि टूटी नहीं, वापस चले आए, फिर गए, इस प्रतीक्षा में कभी तो टूटेगी, फिर गए तो उनसे भेंट हो गई। तो उनसे प्रार्थना की, महर्षि संसार में इतना क्लेश फैला हुआ है, इतने जीव दुखी हैं, इतने लोग दुखी, आप यहां शांति में बैठे हैं, उनके कल्याण के लिए आप क्यों नहीं संसार में चलते? कोई जवाब नहीं। फिर समाधि में चले गए। कब तक प्रतीक्षा करते हो? आनंद स्वामी चले आए, अगले दिन फिर पहुंच गए। कुछ लोग जिद के पक्के होते हैं ना, विवेकानंद की तरह से। कई दिन वो यही प्रयास करते रहे। तो एक दिन स्वामी जी आनंद स्वामी से बोले, देख तो एक एक संसार के आदमी साथ ही चार चार स्वामी बांधे, इनका कुछ नहीं होने वाला। जैसी दुनिया है वैसी ही चलती रहेगी। अब आप बताइए, एक समाधि का मालिक क्या कह रहा है? उसके अंदर कोई वासना ही नहीं, कोई डिजायर ही नहीं है, लोक कल्याण की भी डिजायर नहीं है उसके अंदर, उससे भी मुक्त है। तो यदि सामाजिक एंगल से देखा जाए, मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम सत्पुरुष में भी कल्पना करते हैं कि उसमें भी मन है और वो भी लोक कल्याण की सोचता है, लेकिन सत्य यह है उसके अंदर कोई कल्पना नहीं होती लोक कल्याण। ये उसकी प्रारब्ध लीला होती है, क्योंकि महर्षि रमण कह रहे हैं जिन कर्मों के लिए करने के लिए ये देह पैदा हुई है वो सारे कर्म इस देह से होंगे, तुम चाहो या ना चाहो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, चाहे वो कृष्ण की देह है, चाहे वो राम की देह है, चाहे वो मंगत की देह है, चाहे वो नानक की देह है, उससे वो सारे कर्म होंगे जो देह प्रारब्ध लेकर आई है। तो सत्पुरुष की ये प्रारब्ध लीला है, हम उसके कर्म गिनते हैं, तो कर्म करता है, क्योंकि जैसा मैं हूं वैसे समझता हूं उसको। वो तो परमानेंट समाधि में है, कर्म करते हुए भी समाधि में है और कर्म ना करते हुए भी समाधि में है, आंख बंद है तब भी समाधि में है, आंख खुली है तब भी समाधि में है, इसलिए उसको सहज समाधि कहा जाता है। वो देह के कर्म करते हुए भी मुक्त है, उसका देह से कोई संबंध नहीं है, उसको वहम नहीं है कि मैं देह हूं, ये मर जाएगी बचा लूं उसको, उसका ये भावना ये संकल्प नहीं होता। और इसको महर्षि रमण बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। किसी ने पूछा कि सत्पुरुष को देह अपनी कैसी प्रतीत होती, तो उन्होंने कहा कि जैसे कोई पथिक जा रहा हो उसके कंधे पे तौलिया लटका हो, रास्ते में कहीं गिर पड़े उसको पता ही नहीं कहाँ गिर गया, सत्पुरुष के लिए देह इसी प्रकार होती है। अब देखिए ऋषि की बात है, तो मैं देह हूं ये जीव का अज्ञान है या नहीं है? जिस जीव में ज्ञान, जो जीव ज्ञान में स्थित है उसके लिए देह नाम की वस्तु कोई चीज नहीं। इसलिए जब तक पूर्ण गुरु की बातों का गहराई से मनन नहीं करते आप ने ये वहम मिटेगा कैसे? आपको गहराई से मनन करना ही पड़ेगा, नहीं तो 20-20 साल सत्संग सुनते रहोगे, ऐसी विश्लेषण पढ़ते भी रहोगे सुनते भी रहोगे, रहोगे वैसे के वैसे, इंद्रिय भोग का संयम तक नहीं सीख पाओगे। ना इस बात का अर्थ समझ पाओगे, महाजी कह रहे हैं कि इंद्रियों के भोगों में सत असत का विचार करना चाहिए। अब सत असत का विचार का क्या मतलब हुआ? उचित अनुचित, कुछ भोग अनुचित होते हैं कुछ उचित होते हैं। तो इंद्रियों के भोग मन को चंचल करते हैं और मन का चंचल होना ये जीव के लिए मुसीबत का कारण है, बेचैनी का कारण है, इसलिए वो इससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए सत्पुरुष के संपर्क में आया है, सत्पुरुष पर उसने विश्वास किया है, सत्पुरुष के ज्ञान को उसने सीखने की कोशिश की, इसलिए वो उस ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है जो इस मानव देह के अंदर खुद मौजूद है, जिसको देह का बंधन नहीं है, जो मेरी देह को जीवित रखे हुए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि उसमें शांति है, उसमें आनंद है, वो ज्ञान रूप है, उसका अनुभव यदि हो गया तो सारे संसार का सारे ब्रह्मांड का ज्ञान मेरी बुद्धि से निकल जाएगा, मैं ज्ञान में स्थित हो जाऊंगा, मैं ज्ञानमय हो जाऊंगा, जिसको ईश्वर कहते हैं। तो इसीलिए चाहे वो समता विलास की भोगवाद स्थिति हो, चाहे वासना विवेक हो, वो आपको यही समझाता है कि ये पांच तत्व का संसार, पांच तत्व का शरीर, कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां और ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो कुछ भी विज्ञान है, कर्तापन वासना, ये सारी की सारी जीव के लिए मुसीबत है, जीव के ऊपर बोझ है, जलेबी खाने का सुख तुझे मिलता है हफ्ते में एक बार 2 मिनट का, क्योंकि जलेबी खाने में 2 मिनट से ज्यादा लगते नहीं होंगे, लेकिन एक हफ्ते उसकी याद आती है, एक हफ्ते उसकी प्रतीक्षा रहती है। तो एक हफ्ते मन बेचैन रहता है तब 2 मिनट का चैन मिलता है। कितना महंगा चैन है, एक जलेबी नहीं है, हजारों आइटम है, हजारों चीजें, ऐसी ऐसी चीजें जो इंद्रियां भोग नहीं करती हैं, मन भोग करता है उसका। मुझे सम्मान मिल जाए, लोग मेरा आदर करें, कितना मजा आता है जब कोई आदर होता है। कौन से इंद्रिय का भोग है ये? आदर कोई इंद्रिय भोग है? ये मजा आता है, ये अहंकार का भोग है। वाणी कह रही है अहंकार विकार, मैं इस भोग से खुश हो रहा हूं लेकिन मुझको होश ही नहीं है, ये तो मेरा विकार बढ़ रहा है। जो सम्मान से खुश हो रहा है उसका तो विकार बढ़ रहा है। तो अब बताइए संसार में बचा क्या? ऐसी बुद्धि के लिए, या यूं कहिए कि ऐसे जीव के लिए जिसमें यह विवेक आ गया, ये बात समझ गया, इस विज्ञान को सीख लिया उसने, उसके लिए बचा क्या संसार? इसलिए जिसके अंदर विवेक आता है, महाराज कहते प्रेमी, उसके अंदर वैराग्य आ जाता है। खीर में पता लग गया इसमें किसी ने जहर मिला दिया है तो दृढ़ वैराग्य हो जाएगा उसके प्रति, खानी ही नहीं है, मार देगी मुझे। तो जिन इंद्रिय भोगों में जहर आपको प्रतीत होने लगे, जिंदगी का फेल्योर मेरा हो जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये दिखाई पड़ने लगे, वो कैसे उसमें फंसा रहेगा? इसलिए कई डॉक्टर कह दे शुगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट को कि भाई नमक का त्याग तुझे करना पड़ेगा, नहीं तो तेरा ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होने वाला। किसी ने प्रिकॉशन बता दी, या तो जिंदगी बचाए या नमक खाए। नमक प्रैक्टिस करके छोड़ता है, अच्छा लगता है, प्रैक्टिस करके छोड़ता है, फिर फीका ही अच्छा लगने लगता है। जैसे शुगर के पेशेंट को फीकी चाय अच्छी लगती है, उसको शुगर डाल दो कहेगा क्या तुमने डाल दिया, बुरी लगती है उसको। इंद्रियां वही है लेकिन वही चाय उसको मीठी बुरी लगने लगती है, इंद्रियों की आदत पड़ जाती है कि फीकी ही चाय अच्छी लगती है। तो उसी प्रकार जब जीव को इस अध्यात्म विद्या का विचार करते करते, मनन करते करते, जब ये शिक्षा मिल जाती है, ये बात इसी समझ में आ जाती है कि ये तो मौत का रास्ता है, ये तो बेचैनी का रास्ता है, मैंने तो जीवन के रास्ते पर चलना है जहां मौत नहीं है, जहां मानसिक बेचैनी नहीं है, जहां केवल शांति है, मैंने उस रास्ते पर चलना है और वो मैं कर सकता हूं। और कैसा विज्ञान है ये, तो जीव विज्ञान बायोलॉजी पढ़ते हैं हम, एक ये भी जीव विज्ञान है, ये जीवन का विज्ञान है। ईश्वर के रास्ते पे चलने वाला जीव अमर हो जाता है, देह के बंधन से मुक्त हो जाता है, बिना देह के वो आनंद में रहता है, ईश्वर के साथ एक होकर रहता है, उसकी मृत्यु है ही नहीं, ये देह चली भी गई दूसरी खड़ी हो जाती है। और जो कमाई इस देह में कर ली वो बचपन से एज इट इज प्राप्त हो जाती है, जैसा स्वभाव लेकर देह छोड़ी थी वो स्वभाव बचपन से आपके पास होता है, वो सतबुद्धि बचपन से ही आपके पास होती है, वो सतोगुणी संसार संस्कार बचपन से आपके पास होते हैं, जो भक्ति ईश्वर की थी वो बचपन से ही आके आके स्वभाव के अंदर होती है। ये सब बातें सत्पुरुषों के जीवन से आपको पता लग जाती, इसीलिए ना मौत है, ना वहां बेचैनी है, ना संसार का भय है वहां पर, तो ऐसी मंजिल क्यों ना प्राप्त की जाए। और ये सब बाहरी चीजें हैं, ये सब बाहरी चीजें, और इसका स्रोत कर्तापन है कि मैं करता हूं, मैं करता हूं, तो ये मैं जो है यही फिर देह तैयार करनी थी। क्यों कर्म तो करता है तो कर्म होंगे ना, करता है तो कुछ करेगा ना, करेगा किससे, देह से तो करेगा, इसीलिए देह पैदा हो जाता, जीव देह के बंधन में आ जाता, इसलिए रास्ता भी फिर वही है। आज कहते हैं प्रेमी ये जीव विकारों में फंसा हुआ है, इसलिए तूने सही सीधे रास्ते पे चलना है, अभी तो उल्टे रास्ते पे चला ना, जब सीधे रास्ते पे चलना है तो तूने सबसे पहले इंद्रिय संयम सीखना होगा। इन भोगों में दोष का दर्शन करना होगा, इनसे अल्टीमेटली इसका नतीजा क्या निकलेगा, स्टार्ट इंद्रिय संयम से होता है। इसी माँ कहते हैं प्रेमी सबसे पहले तो तू जो सामाजिक ज्ञान तेरे अंदर है कि किसी को मारना गलत है, मीट खाना गलत है, शराब पीना गलत है, जो जानता है मोटे मोटे विकार है तो जानता है, पहले उन विकारों को छोड़, किसी को धोखा देना गलत है, जो तू मोटे मोटे विकार जानता है, विकार रहित जीवन बना अर्थात साफ सुथरा जीवन बना, कैसा, अब किसी भी मनुष्य को कहो कहेगा ये तो बड़ी जरूरी बात है, ये तो मानवता के लिए बड़ी जरूरी है, ये ऐबों को छोड़ो, एक परिवार के अंदर एक शराबी पैदा हो जाए तो सारा परिवार कैसे क्लेश में समय व्यतीत करता है, जरा विचार करते थे कितनी परेशानी लोगों को होती है, लेकिन वो फिर भी डटा रहता, मार पिटाई भी करता है। तो जब हम सांसारिक विकारों को छोड़ देते हैं, जो संसार भी कहता है ये विकार है, तब हमको फिर ये बारीक विकार नजर आते हैं, जो सत्पुरुष कह रहे हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये विकार है, इनका निवास स्थान मन है, क्योंकि इसके संस्कार मन के अंदर करते हैं, इसलिए वो कहते हैं अब तो त्याग मार्ग पर चल, इनके भोगों को धीरे 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 कम करना सीख, और साथ में प्रभु का विज्ञान सीखकर अंतर्यामी प्रभु की उपासना करना सीख। उपासना का मतलब क्या हुआ कि अब मैंने प्रभु का अनुभव करना है इस देह के अंदर, और संसार का जो भोग विलास का जो प्रोग्राम है उसको मैंने धीरे धीरे कम करते जाना, धीरे धीरे सिकोड़ते जाना, सिकोड़ते जाना, जिसको महाराज कह रहे हैं प्रेमी जीवन सादा करते जाना है। सादे का मतलब ही यही है कि धीरे धीरे वासनाओं को कम करते, और सादगी कुछ नहीं होती है, धीरे धीरे वासनाओं को सीमित करते जाना, यही सादगी। तो ये 5 पॉइंट प्रोग्राम जो महाराज जी ने दिया, सादगी सत्य सेवा सत्संग सत्सिमरण, ये अपने आप को श्रिंक करना है, अपने आप को धीरे धीरे सिकोड़ते जाना है, कमाई भी कम, भोग विलास भी कम, खर्चे भी कम, लोगों से मुलाकातें भी कम, लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट भी कम। तो बताइए जिसका जीवन छोटा सा हो गया, सादा सा हो गया, क्या बेईमानी करने की जरूरत है उसको, क्या किसी को धोखा देने की जरूरत है उसको, उसका तो काम ईमानदारी से चल जाता है, उसको ज्यादा चाहिए वो करे बेईमानी। इसलिए इस दुनिया के आप देखते हैं जो सांसारिक गुरु हैं वो खुद बेईमान हो जाते हैं, कि उन्हें ज्यादा चाहिए, ज्यादा चेले चाहिए, ज्यादा उनको भोगला चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए। तो धीरे धीरे जब आपके ऊपर से ये मन के ऊपर से भोगों का बोझ उतरता है ना, तब अध्यात्म की गहराई बुद्धि पकड़ने लगती। बुद्धि, माँ जी कहते हैं प्रेमी 5 नियम का पालन करने वाले की बुद्धि बलवान हो जाती है। बलवान किस रूप में हो जाती है? बुद्धि में विवेक बल आ जाता है, सही शास्त्रों के सही मार्गदर्शन को बुद्धि पकड़ने लगती है, स्वीकार कर लेती है, उसमें अपना कल्याण देखती है, तो फिर उसके अंदर त्याग बल आ जाता है, फिर बड़े बड़े भी त्याग कर सकती है बुद्धि। प्रभु के सिमरण में मन लगने लगता है, मन में भी एकाग्रता का बल आ जाता है। तो जब गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार अंतर्यामी प्रभु की याद करती है, प्रभु का आनंद इसके अंदर प्रकट होता है, प्रभु का अनुभव प्रकट होता है, तब इसको पता लगता है जो शास्त्रों में पढ़ा था, जो सुना था, वो सब सत्य है। इसलिए फिर आगे इसकी यात्रा चलती रहती है। एक दिन वो अवस्था भी इसको मिल जाती है जहाँ इसके अंदर वासना ही खत्म हो जाती है, कर्तापन ही खत्म हो जाता है। उस दिन पता लगता है कि मैं और ईश्वर एक, इसको मोक्ष है। ओम नमः सत्यं सर्वं।